अगली सुबह हवेली का माहौल हमेशा की तरह व्यवस्थित था, लेकिन शहर के दूसरे कोने में एक अलग ही कहानी चल रही थी। दोपहर ढल रही थी, स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। गेट के बाहर बच्चों की भीड़, बसों का शोर, हॉर्न, टहाके और बैग टांगे लड़कियों का झुंड फैला हुआ था। इसी भीड़ के बीच रम्या अपने कंधे पर बैग टांगे बाहर आई। सफ़ेद शर्ट हल्की सिकुड़ी हुई थी, नीली स्कर्ट घुटनों तक, बाल पोनीटेल में बंधे हुए। चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में आज एक अलग सी चमक साफ झलक रही थी। हवेली की कार गेट के पास खड़ी थी। ड्राइवर रमेश उतरकर सम्मान से खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोलते हुए बोला, छोटी बिटिया चलिए। रम्या ने इधर उधर देखा, उसकी दो सहेलियां पास ही खड़ी थीं। उसने सहज लहजे में कहा, आज नहीं रमेश काका, मैं बस से आ जाऊंगी, रिया के साथ जाना है। रम्या थोड़ा चौंका, पर बड़ी ठाकुराइन ने, वो कुछ कह पाता उससे पहले रम्या ने बात काट दी, मैं बता दूंगी, आज बस से आना है। उसकी आवाज़ इतनी सामान्य थी कि रमेश को शक का मौका ही नहीं मिला। उसने सिर हिलाया और कार लेकर चला गया। कार के जाते ही रम्या ने गहरी सांस ली। रिया उसके करीब आई और धीमे से फुसफुसाई, पक्का है? रम्या के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, हाँ। कुछ ही मिनटों में भीड़ छटने लगी, बसें निकल गईं, सड़क खाली होने लगी। रिया सच में बस की तरफ बढ़ गई, जबकि रम्या वहीं खड़ी रही। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। तभी सड़क के मोड़ से एक काली बाइक दिखाई दी। हेलमेट पहने एक लड़का सफ़ेद टी शर्ट और जीन्स में धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता आया। बाइक उसके सामने आकर रुकी। उसने हेलमेट उतारा और मुस्कुराकर कहा, लेट हो गई मैडम। रम्या ने बनावटी नाराज़गी दिखाई, तुम ही लेट हो, मैं कब से खड़ी हूँ? वो हंस पड़ा, अरे 5 मिनट भी नहीं हुए, क्योंकि मैं 5 मिनट से यहीं घूम रहा था। उसकी बात सुनकर रम्या हल्का सा शर्मा गई। वो जल्दी से बाइक पर पीछे बैठ गई। गगन ने कहा, कस के पकड़ना। रम्या ने कहा, मैं गिरूंगी नहीं। लेकिन फिर भी उसने हल्के से उसके कंधे पकड़ लिए। बाइक आगे बढ़ी और स्कूल का शोर पीछे छूट गया। हवा उसके बालों को छूती हुई गुजर रही थी। वे शहर की भीड़ से दूर निकल आए। सड़क के दोनों ओर अधबने मकान और खाली प्लॉट थे। कुछ देर बाद उसने बाइक एक पुराने अधूरे मकान के सामने रोक दी। दीवारें बनी थीं, मगर दरवाजे खिड़कियां नहीं थीं। आसपास घास उगी हुई थी, जगह सुनसान थी, पर डरावनी नहीं, बस खाली। दोनों बाइक से उतर गए। रम्या ने बैग दीवार के पास रखा और धीरे से पूछा, अगर किसी ने देख लिया तो? वो हंसकर बोला, यहां तो कुत्ते भी नहीं आते। दोनों दीवार के सहारे खड़े हो गए। हवा हल्की चल रही थी, दूर कहीं ट्रेन की आवाज सुनाई दी। उसने पूछा, कल फोन क्यों नहीं उठाया? रम्या का चेहरा थोड़ा उतर गया। घर में सब थे, माँ भी, मौका नहीं मिला। वो बोला, तुम हर बार यही कहती हो। रम्या ने हल्का सा चिढ़कर जवाब दिया, मेरे घर का माहौल तुम्हारे जैसा नहीं है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सॉरी, बस तुम्हारी आदत हो गई है। रम्या ने उसकी आंखों में देखा और धीमे से कहा, मुझे भी। कुछ देर वे यूं ही खामोश खड़े रहे। फिर उसने पढ़ाई की बात छेड़ी। रम्या ने माथा से कोरते हुए कहा कि मैथ समझ नहीं आता। उसने हंसकर कहा कि वो पढ़ा देगा। रम्या ने मजाक में उसे चुनौती दी। उसने जेब से एक छोटा सा चॉकलेट निकाला और उसे थमा दिया। बस ऐसे ही, उसने कहा। रम्या ने चॉकलेट लेते हुए धीमे स्वर में कहा, घर में सब मुझे बच्चा समझते हैं। उसने पूछा, और तुम? रम्या ने हल्की जिद के साथ कहा, मैं अब बच्ची नहीं हूं। वो मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। अचानक रम्या ने पूछा, तुम्हें हमारे बारे में डर नहीं लगता? वो कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, डरता हूं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहता। उसके इस जवाब से रम्या की धड़कन फिर तेज हो गई। उसने आसमान की ओर देखा, धूप हल्की पड़ चुकी थी। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा, देर हो गई तो सवाल होंगे। वे वापस बाइक के पास आए। इस बार वो खुद बखुद उसका कंधा पकड़कर बैठ गई। कुछ दूरी पहले उसने बाइक रोक दी। यहां से मैं ऑटो ले लूंगी, रम्या ने कहा। उसने सिर हिलाया, घर पहुंचकर मैसेज कर देना। दोनों कुछ सेकंड एक दूसरे को देखते रहे। कोई बड़ा वादा नहीं, बस एक हल्की मुस्कान। फिर रम्या मुड़ गई। पीछे बाइक की आवाज़ दूर होती चली गई। उसके कदम तेज थे, लेकिन मन अब भी उसी अधूरे मकान के पास ठहरा हुआ था। एक छोटा सा रास्ता, जो फिलहाल सिर्फ दो दिलों के बीच था, और हवेली अभी तक उससे अनजान थी। शाम होने लगी थी जब हवेली के आंगन में कार आकर रुकी। ड्राइवर रमेश घबराया सा उतरकर भीतर की ओर बढ़ा। बरामदे में शकुंतला पहले से खड़ी थी। उनकी नज़र कार पर पड़ी, और जैसे ही उन्होंने देखा कि पीछे की सीट खाली है, उनका चेहरा सख्त हो गया। रम्या कहाँ है? उनकी आवाज़ में सीधा सवाल नहीं, इल्ज़ाम था। रमेश ने झुककर कहा, मालकिन, छोटी बिटिया ने कहा था कि वो बस से आएंगी, अपनी सहेली के साथ। और तुम मान गए? शकुंतला की आवाज़ ऊँची हो गई। वो बच्ची है, उसे अकेले छोड़ाए? रमेश पसीना पूंछते हुए बोला, उन्होंने कहा था कि आपसे बात हो गई है। मैंने सोचा। सोचा? शकुंतला लगभग भड़क उठी। तुम्हारा काम सोचना नहीं, उसे सुरक्षित घर लाना है। तभी भीतर से रत्ना देवी धीरे धीरे बाहर आई। उम्र ने चाल धीमी कर दी थी, पर आवाज अब भी संतुलित थी। क्या हुआ, इतना शोर किस बात का है? शकुंतला ने झुंझला कर कहा। मालकिन, ये इसे अकेला छोड़ाया, कह रहा है बस से आएगी। रत्ना देवी ने एक पल रमेश की ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोली, ठीक है, आ जाएगी, रोज ही तो आती है। पर माँ। शकुंतला, रत्ना देवी ने हल्के पर ठोस लहजे में टोका, बच्ची बड़ी हो रही है, हर कदम पर घबराओगी तो वो और छुपकर काम करेगी। शकुंतला चुप तो हो गई, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उन्होंने धीमे से कहा। रत्ना देवी ने आकाश की तरफ देखा, जहां सांझ गहराने लगी थी। कोई नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आ जाएगी, घबराने से कुछ नहीं होता। बरामदे में सन्नाटा उतर आया, पर शकुंतला के मन का संशय अभी भी शांत नहीं हुआ था।